ये आकाशवाणी है। अब आप शक्ति सिंह से समाचार सुनिए। लोकसभा ने आवर्जन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य आवर्जन कानूनों को आधुनिक बनाना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। कानूनों की अधिकता और परस्पर व्यापकता से बचने के लिए ये विधेयक लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने, भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए वैश्विक मानदंड सुनिश्चित करने और अनुसंधान तथा विकास और विनिर्माण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व है और अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025 प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा।
संसद ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनुमोदन कर दिया है। राज्यसभा ने कल वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। इसके साथ ही 2025-26 के लिए बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोकसभा ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी थी। वित्त विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 का उद्देश्य कर निश्चितता लाना, व्यापक सुगमता बढ़ाना और भारतीय करदाताओं का सम्मान करना है। उत्तर प्रदेश में आगामी ईद उल फितर त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने व्यापक सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। इसमें जोन और सेक्टर योजना के तहत पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा तैनाती के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, किसी भी नई परंपरा आरंभ करने से रोकने और निवारक उपायों के तहत असामाजिक तत्वों की सूची को अद्यतन करने के आदेश दिए गए हैं। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच ईद से पहले आज अदा की जाने वाली अलविदा नमाज के लिए मस्जिदों में तैयारियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में सुदूरवर्ती जंगल के इलाकों में दिनभर चली भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की भी जान जाने की आशंका है, जबकि एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 7 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने घुसपैठिए आतंकवादियों के एक समूह के खिलाफ अभियान चलाया। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के सदस्य हैं। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कठुआ क्षेत्र के सान्याल जंगल में घेराबंदी से बच रहे आतंकवादी हैं या कोई अन्य आतंकवादी समूह है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिसकर्मियों के हताहत होने की अभी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने कहा कि आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर वेनेजुएला के युआना पर हमला किया तो अमरीका इसका जोरदार जवाब देगा। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक क्षेत्रीय विवाद है जिसमें तेल और गैस के विशाल भंडार शामिल हैं। श्री रूबियो ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला के लिए एक बहुत बुरा होगा। 3 करेबियाई देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री रूबियो गुआना पहुंचे हैं। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC अमृतसर से भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत कर रहा है। 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा 12 मई को अमृतसर से शुरू होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिरों की यात्रा के बाद 24 मई को समाप्त होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पुरस्कार के लिए पात्र बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर और 1 गेंद में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। IPL में आज चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।